तुझसे लगन लगाए, वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए, वो परमानंद को पाए। लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। गहरा सागर हम सारे तेरे मोती, हम सब का तू ही रचेता, हम सब है रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए, बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए, वो परमानंद को पाए।
ओम शांति। तो आज हम उस टॉपिक पर चिंतन करने जा रहे हैं जो आज के समय में हर ब्राह्मण संसार, ब्राह्मण आत्माएं भी व्यर्थ, साधारण और फालतू बातों में उलझे हुए हैं, जिसके कारण से पुरुषार्थ के मार्ग में जो विघ्न रूप बन रहा है। तपस्या जिस रूप से होना चाहिए और जिस रूप से हमें प्राप्ति का एहसास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण यही है कि परपंच के सरपंच बनते हैं। तो परपंच आज संसार में सबके जीवन में इस प्रकार की आदतें, लत लगी हुई होती है। और जहाँ संगठन होता है, दो चार आठ दस लोग होते हैं, एक दूसरों के लिए तीखा टिप्पणी करना, ताने वाने बोलना, कुछ ऐसी वैसी बातें सुना करके माहौल को खराब करना, तो इस प्रकार की जो आदतें, इस प्रकार की जो संस्कार पड़ी हुई है, जिसके कारण से लगता तो बहुत छोटा है ये, लेकिन इसके बहुत बड़ा हानि हम सबको होता है। जिसके कारण से जैसे एक अच्छा चलने वाला मशीन के अंदर में अगर वायरस घुस जाता है तो पूरे मशीन को ही बर्बाद कर देता है। बड़े बड़े इंजन में एक भी थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो जाता है, पूरे मशीन को ही बर्बाद कर देता है और उसकी खामियां जो सबको भुगतनी पड़ती है। इसी रूप से आज हम सब चले इतनी लंबी रास्ते में, जिस रास्ते की बदौलत हमें स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम संसार और स्वर्णिम संस्कार के हकदार बनने जा रहे हैं हम सब। इसलिए ये छोटे छोटे हमारे मीठे दुश्मन, स्वीट दुश्मन है ये हमारे, जिसको लगता तो साधारण है लेकिन ये पूरे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देता है, उच्च प्राप्तियों से वंचित करता है। तो ये जो परपंच की जो सरपंच कहते हैं, क्योंकि दुनिया में भी पंचायती राज होती है, तो वहाँ भी तहसील में सरपंच होता है और उससे बड़े एरिया जो होता है उसको कहते हैं प्रधान पंच, पंच का वो प्रधान होता है। तो इसी रीति से पांच बातों को इंगित करके ये बताई जाती है। तो हमारे भी अंदर जो बाबा ने मोटे रूप में पांच विकार का जो जिक्र किया है उसके ही छोटा स्वरूप, और वही छोटा स्वरूप देखने में आता नहीं है, समझने में भी मुश्किल लगती है, तो वही हमें जैसे कि परपंच के सरपंच बन जाते हैं। तो वो सारी चीजें देखने में शुरू होता है छोटी छोटी बातों से, जैसे कि जहाँ शुरू होती है कोई व्यक्ति दूसरों से रूठ जाता है, किसी से अनबनी होता है, किसी के साथ ऊपर नीचे होता है, तो पहले वो मन के अंदर समा करके रखता है, तो ज़्यादा होने लगता है तो फिर धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है वो सारी बातें, और देखते ही देखते उसके साथ दो चार और भी अनबनी किसी के साथ हो जाता है उनके साथ, तो फिर उनके भी एक छोटा सा संगठन बनने लगता है, मंडली बनने लगती है। तो फिर उनके आगे पीछे, तो आगे तो बोल नहीं सकते हैं, पीछे से उसके खिलाफ में उसके विरुद्ध ऐसी बातें जब छिड़ जाता है, छोटी छोटी बातें होता है, और वो बातें धीरे धीरे कभी तो बड़ा रूप ले लेता है, कभी छोटे में भी ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए वहाँ के वातावरण, वहाँ के वायुमंडल खराब होने लगता है, और जो भी उसके चपेट में आ जाते हैं उसको भी उसके प्रति भावना खराब होना, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण खराब होना, ऐसी बातें चलती है। तो ये बातें तो संसार की दुनिया में तो होते ही रहता है, तो ब्राह्मण के संसार में भी ये सब बातें कभी कभी दिखने में आता है, समझने में आता है, और आगे हम पुरुषार्थों में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और हर एक ब्राह्मणों का ये कंप्लेंट रहता है, बाबा की याद भूल जाती है, याद की यात्रा में इतना सुख जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, इस प्रकार के जो कंप्लेंट सुनने में आता है। तो इस सब बातों का मुख्य कारण यही रहता है। और सूक्ष्म रूप से अगर चेकिंग किया जाए तो सबसे पहले हम स्वयं के ही परपंच बन जाते हैं, स्वयं के परपंच में फंस जाते हैं और स्वयं के सरपंच बन जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के कंप्लेंट अंदर ही अंदर से इकट्ठा होने लगता है, और फिर उसको बाहर ही व्यक्त करने लग जाते हैं, तो फिर ऐसे ही मंडली तैयार हो जाती है। तो हाँ में हाँ मिलाने वाले और बातों में बातें का सपोर्ट देने वाले मिल जाते हैं, तो यह एक दो होते हुए एक से दो, दो से चार होके बढ़ता है, तो इससे कितना ज़्यादा नुकसान है। तो इस सारे नुकसान को अगर हम आकलन किया जाए तो हम भूल से भी ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। इसलिए दादी जानकी जी कहते हैं, कहती थी कि किसी के भी परचिंतन परदर्शन मैंने कभी भी नहीं किया है, तो इतने बड़ी मंजिल में पहुँचने के लिए कई सारे छोटे छोटे टिप्स को गांठ बांध करके आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो हमारी एनर्जी हमारी ऊर्जा कहाँ नष्ट हो रही है, कहाँ बर्बाद हो रहा है समझ में नहीं आता है। इसलिए हमने चिंतन के जरिए इसका जो क्या क्या नुकसान हो सकता है इसका थोड़ा सा हमने आकलन करके उस बातों को आगे रखने की कोशिश की, तो उसमें हमने देखा तो सबसे पहले तो हमारे संकल्प खराब हो जाते हैं। संकल्प जब खराब हो जाता है, संकल्प व्यर्थ चलने लग जाते हैं, व्यर्थ का तूफान शुरू होने लग जाता है, तो उस समय फिर हमारा समय भी बर्बाद होने लग जाता है। जहाँ समय बर्बादी की ओर चला जाएगा तो जिस समय का इतना वैल्यू है उस समय को अगर हम ऐसे व्यर्थ संकल्प में गुजार देते हैं, निकाल देते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी को भी बहुत बड़ा नष्ट कर देता है। और एनर्जी हमारी कहाँ लीकेज हो रही है समझ भी नहीं आता है। और आगे बढ़ने के नाम में कहते हैं, 9 दिन चले थे 2.5 कोस की, इस 9 दिन चले 2.5 कोस, यही बातें हो जाती है। और हमारे पुरुषार्थ की जो जीवन है उसको चीटी के माफिक हमारी गति बना देता है। तो उसके बाद में जो वायुमंडल खराब हो जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, तो उसके कारण से वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी इसका इफेक्ट होने लग जाता है। तुरंत ही योग में बैठते हैं तो वहाँ के माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी गूंजने लगती है, और तुरंत ही वो बाबा की याद में पिकअप नहीं कर सकता है। तो वातावरण का भी नुकसान करते हैं, तो वायुमंडल की भी हम क्षति पहुँचा रहे होते हैं। दिखने में तो हल्का सा लगता है ये सब चीजें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए ऐसा दिल से निकले कि हमारे आगे वालों ने कितनी अच्छी तपस्या करके यहाँ के वातावरण वायुमंडल बना दिए, हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारी याद नेचुरल हो जाती है। तो इस प्रकार के उनके मुख से जो बोल निकलना चाहिए वो बोल नहीं निकलते। इसलिए आगे फिर हमें उसको चिंतन में निकाले थे, जहाँ पर हम चाहते हैं, तो ऐसे जो हम चिंतन परदर्शन में लागे रहते हैं व्यर्थ बातों में, तो हमारा सर्व का रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, सबका सबकी भावना खराब हो जाती है, और सबको लगता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है, इसके संग नहीं करना चाहिए, ऐसा माहौल बनाने वाले व्यक्ति, तो इस प्रकार के ब्लेम लगने लग जाते हैं। और रिस्पेक्ट के जो नजरे निगाहें हैं हमारे प्रति, लोगों का कम होने लगता है। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि उसको पूरे लाइफ में बहुत बड़ा उसका इफेक्ट रहता है, और पहले पहले हमने जो भी चीजें करके आए आगे, तो आगे अभी आकर के अगर उसका निचोड़ में देखना चाहते हैं, निचोड़ क्या है, पुरुषार्थ ठीक से नहीं हो पा रही है, प्राप्ति ठीक से नहीं हो पा रहा है, प्राप्ति के मार्ग से हम वंचित हो रहे हैं, उसका कारण को भी अगर हम देखना चाहते हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी समय इस प्रकार की आदतों से हम मजबूर थे, इसीलिए आज उसका साइड इफेक्ट हमको हो रहा है। इसलिए हमें देखना है कि ये बुरी आदत, जो परपंच के जो सरपंच बनने की जो आदत है, उसके कारण से व्यक्ति का जीवन जैसे कि दिमक की तरह अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। क्योंकि दिमक कहीं भी घुस जाती है, तो अलमारी में अगर घुस जाता है तो सारे फाइल को ही चॉट कर देता है, कहीं जो कपड़े के अंदर घुस गया देखने में तो लगता है ठीक ठाक है, लेकिन अंदर ही अंदर से उसकी स्वाहा कर देता है। तो इसी रीति से ये परपंच की सरपंच की जो आदत पड़ जाती है और हम उसके मजबूर हो जाते हैं, तो वो भी हम सबको दिमाग की तरह खोखला कर देता है। और हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता है। जैसे घुन कहीं अनाज में लग जाता है, तो जैसे कि गेहूं में घुस गया, गेहूं के जो स्टोर्स में अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है, मक्की के अंदर घुस गया, पूरे मक्की के अंदर का जो सब खा जाता है। इसी रीति से हमारे जीवन को भी रग रग में खोखला करके रख देता है। इसलिए हम सोचते हैं कि इससे कैसे मुक्त हो, तो आगे भी बहुत सारे नुकसान। तो झरमई जगमई की जो आदत है, ये तो बहुत बड़ा नुकसानकारक है। बाबा के जमाने में भी इसके ऊपर बहुत सख्त नजर से देखा जाता था। तो आज भी बाबा की मुरली में 2 दिन 3 दिन 4 दिन छोड़कर के ये बातों को जिक्र किया जाता है कि पर दर्शन और पर चिंतन करने वालों को दुश्मन समझो, आप उसके करीब नहीं जाओ, नजदीक नहीं जाओ, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तो उससे दूर हो जाओ, इस तरीके से भाव हमें अलर्ट करते रहते। इसलिए आगे सर्व का प्यार स्नेह हमारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि सबके जो स्नेह जो प्यार हमसे मिल रहा था तो कहते हैं कि बकवास बोलते, तो आवाज मुख से जो आवाज बक माने को शब्द हो गया उससे बास निकलती है, तो उसका जो बास किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कहते हैं ज्यादा बकवास नहीं करो बोलते। तो किसी के बीच में ऐसी बातें संदर्भ आती है तो ऐसी बातें कहा जाता है। तो इसलिए हम इस बातों से भी इतना हमको ध्यान रहना चाहिए कि ये ज्यादा बातें क्यों करते हम, क्योंकि यथार्थ तो बातें सार वाली बातें और सत्य बातें तो ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इधर उधर की बातें जब हम इकट्ठा करने लगते हैं तो इसका कोई अंत नहीं होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। और आगे जाकर के इस लिस्ट में हम आ जाएंगे कि ये संग दोष के लिस्ट में आ जाएंगे, इसके साथ में कोई भी अगर संग करता है तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, और उसके साथ में दो चार दिन चलते फिरते अगर किसी ने देख लिया तो बोलेंगे इसका भी अब दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए हमको भी लोग उस नजर से देखेंगे, संग का रंग लग गया है इसको, और कोई शब्द ऐसे मुख से निकल गई तो लोग बोलेंगे कि उसका रंग चढ़ गया है इसके ऊपर। तो इसीलिए हमें इस संग दोष के जो इतने बड़े कलंक से भी हमें बचना है। तो इसकी आदत को अगर हमने नहीं छोड़ा इस प्रकार की बातों से, जो परपंच के सरपंच बनने वाली बातों से, तो प्राप्तियों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और जो सुधरने का मार्जिन भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर तो इसने बहुत सुख देता है, आनंद आता है, कान खड़े करके हम सुनते हैं, लेकिन योग में जब जाकर के बैठते हैं सबसे पहले वही चीजें अटैक करने लग जाता है। वो तो मामूली रूप से हमने सोचा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जब किसी भी अच्छी चीज में याद की यात्रा में तो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। रात को अगर पर दर्शन पर चिंतन करके हम सोए हैं तो अमृत वेला सबसे पहले सजाए के रूप में हमें वही चीजें आगे आने लगती है, और उसमें ज्ञान का प्रयोग करो, योग का प्रयोग करो, और कई बार तो निकलता ही नहीं उच्चारी चीजें, क्योंकि कभी न कभी उन लोगों से हमें भी कभी कभी हाथ पहुंचा होता है तो उसको भूलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसी बातों से बाबा कहते हैं कि बहुत ज्यादा परहेज रखो, तो आगे जाकर के स्थिति ऊपर नहीं चढ़ती है, हम ठहरती कला में आ जाएंगे। आज तो बाबा ने बोला कि गिरती कला, वृत्ति द्वारा जो परिवर्तन की बातें बाबा ने सुनाई तो ठहरती कला हो जाएगी, न आगे जा रहा है न पीछे आ रहा है, अटका हुआ है, लटका हुआ है त्रिशंकु की तरह, न इधर न उधर। क्यों? इसका यही कारण है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर ब्राह्मण होकर के योग नहीं लगता है तो कोई ना कोई कर्म इंद्रियां भोग भोगने में व्यस्त है, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में सोते आएगी। क्योंकि कहा जाता है कि कोई बुरे चीजों का अगर एक महीना तक हम मनन चिंतन गंथन करते उस बातों में लागे रहते हैं तो उस संस्कार हमारे में सोते आ जाएगी, एक महीने के अंदर अंदर वो हमारा हो जाएगा। अच्छे चीजों के लिए तो कितनी ज्यादा मकसद करनी पड़ती है, लेकिन घटिया चीज सोते ही आ जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि घटिया चीज तो पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको हटाने के लिए पुरुषार्थ तो चल रही हमारी, अच्छी चीज भरने के बाद ही वो निकलेगा, लेकिन वो चीज की पड़ला तो ऑलरेडी पहले से भारी है, तो उससे हम कैसे मुक्त होंगे? तो उसके में आगे जाकर के क्या होगा, जीवन निरस हो जाएगा, किसी भी प्रकार का रस नहीं रहेगी, जीवन हताश होगा, उदास होगा, इस प्रकार के साइड इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि तो इस प्रकार से हमको देखना है कि ये सारी चीजों में लगे हुए कई सारी ऐसी आत्माओं को हम सब ने लौकिक दुनिया में भी देखे हैं, तो अलौकिक दुनिया में भी कभी कभी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, कि जीवन निरस हो जाता है और वो छोटी छोटी जो बुराइयां अंदर जाकर के अवज्ञा के बोझ इतना बन जाता है कि उसको समझना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में भविष्य में जाकर के इतने भयंकर पश्चाताप होगी, जो काम के लिए आए थे, जो बनने के लिए आए थे, जो करने के लिए आए थे, वो मेरे से नहीं हो सका। कारण तो यही, परपंच में फंस गए और सरपंच बनने के चक्कर में क्योंकि दो चार लोग होते हैं तो कोई खास लीडर मुखिया तो होता ही है वहां पर, शुरुआती उस बातों से होती है, फिर बाद में वो आगे जाकर के रूप ले लेता है। तो इसके आगे जाकर के ये भी लगता है कि वो जो चालाक बनने के चक्कर में, चालाक बनने के चक्कर में मूर्ख कहलाया जाएगा। चालाक बनने चल पड़े थे, ये सारी बातें करके मूर्ख कहलाया जाएगा, क्योंकि भगवान आकर के इतनी बड़ी लॉटरी हमें लुटा रहे खजानों का, और छोटी छोटी चीजें दीवार बन जाता है और उस चीज को हमारे जीवन में आने नहीं देता है। तो पहले तो लग रहा था कि इतने सारे लोगों के बीच में इतनी अच्छी बातें सुनाया उसने, उसकी इसकी, उस समय लग ही नहीं रहा था, लेकिन आगे जा करके सब लोग समझेंगे कि खुद भी समझ जाता है वो, और हर व्यक्ति समझता है, क्योंकि किसी न किसी थोड़ा बहुत ज्यादा हर व्यक्ति इसके चपेट में रहता ही है और इसके लपेट में आता है। इसीलिए आगे जाकर के वो संस्कार पहले तो आदत से शुरू हो गई थी और संस्कार बिगड़ जाता है। संस्कार बिगड़ना माना मोटी चीज हो चुकी है, अब वो अंदर चला गया है तो उसको सुधारने के लिए तो बहुत कुछ करनी पड़ती है। कितना भी मेहनत करो उसको सुधारने में, अब उसको प्रोसेसली जाना पड़ता है, कई महीना दिन लगते, कई महीने लग सकते, तो हिम्मत करके कोई 10 दिन 20 दिन 15 दिन ट्रायल तक करते, उसके बाद वो संस्कार इतना हावी हो चुका है कि उसको कुछ करने नहीं देता है। इसके बाद में तो ये लगता है कि जैसे कि दूसरा साइड इफेक्ट क्या होगा कि शारीरिक बीमारी भी बढ़ेगी तो मानसिक बीमारी भी बढ़ेगी, और शारीरिक बीमारी बढ़ने के कारण से सारी चीजों को अगर देखा जाए, एक माता की जो लेक्चर सुन रहे थे हम, थोड़ा सा क्या है उसका हेडलाइन क्या है समझने के कारण से, तो वो बता रही थी और उसने कई सारी एक्सपेरिमेंट की है और उसने प्रैक्टिकल में ऐसी घटना उसने प्रैक्टिकल में करके देखा है। तो वो बता रही थी कि एक माता का लड़का था, कि वो लड़का डॉलेड था, कितना भी पढ़ने के लिए कितना भी मेहनत कराए, उसकी जो अंक आते थे, मार्क्स जो आते थे, 35 से 40 के बीच से कभी आते ही नहीं थे। घर में एकलौता लड़का, सब कुछ दिया उसको, पढ़ाए बढ़ाए ट्यूशन से लेकर के सब कुछ, कभी अंक बढ़ता ही नहीं था, उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता था। तो वो माता उस वहां जाकर के वो जो संघ संस्था है उसमें जाकर के थोड़ी सी ट्रीटमेंट लेने के लिए गई थी, तो उसने उसको सब काउंसिलिंग करके पता किया गया और उसने सब कुछ पता किया उसने। बाद में उसको पता चल गया कि घर में सदा ही हंगामा रहता है, सासू को कुछ भी नहीं छोड़ती है वो, अनप सनप बोलना, सताना, तंग करना, पति भी उसी के चपेट में आ जाता था और घर में माहौल ऐसे बिगड़ जाती थी। तो ऐसी सारी बातों को उसने जो काउंसिलिंग करके पता किया तो उसको बता दिया गया, अगर यहाँ आकर के ये सारी बातें तुम चाहती अच्छा होते हुए देखना चाहती हो, इसके लिए तुम्हें कोई बातों का परहेज करना पड़ेगा और ये ग्लानी करने की बातें, निंदा करने की बातें आज से आपको छोड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए उसने बोला कि ये सब हो जाता है तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, सरेंडर हो गई हूं। तो करते करते वो एक महीने के अंदर में घर की झगड़ा खत्म हो गई, सासू की गुणगान करने लगी, महिमा करने लगी, घर का माहौल इतना अच्छा हो गया। देखते देखते उसका लड़का है ना इतना टैलेंट हो गया कि अभी के डेट में वो कहती है कि 90 प्लस लाता है मार्क्स। तो उसका साइड इफेक्ट कैसा कहाँ जाकर के किसको दुख पहुंचाता है, किसके जीवन बर्बाद कर देता है, हमें तो समझा ही नहीं था। इसीलिए आज भी हम लोग देखते हैं ना, आंखों पंचर वाले, आंखों प्रेशर वाले, कहीं कुछ होता है तो उसका नस वहाँ दबाते हैं, ठीक इधर हो जाता है। कहाँ से कहाँ इसका कनेक्शन है, कहाँ से कहाँ इसका रिलेशन है, और जिसको इसके बारे में नॉलेज है वो तो स्वतः पता लगा लेते। तो वो आज कहती है कि घर का माहौल ठीक हो गया, पति भी उसके लिए सुभावना, अभी घर उसको सुभावना देने लग गया, और उसको बोल रहा था कि इस माहौल से निकल गई, तो वहाँ जाकर के उसने इतना थैंक्स दिया, इतनी शुक्रिया किया उनको। तो इसी रीति से हम भी अगर देखते हैं तो इसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट है। दूसरी घटना सुना रहे थे कि वो माता कि घुटना उसका दर्द होना शुरू हो गया, उम्र हुई नहीं थी और घुटना दर्द इतना बढ़ गई कि कितना खर्च करो, अभी ऑपरेशन करने का तो उम्र नहीं है, करे क्या। तो उसमें बाद में उसने काउंसलिंग करके ये पता किया, सुबह वॉकिंग में जाते थे तो 5-6 लोगों की मंडली होती थी और एक दूसरों का घर की बातें, एक का रुका नहीं दूसरा सुना रहे, दूसरों का रुका नहीं तीसरा सुना रहे, जैसे उनकी मंडली इतना जम गई थी। तो उसने काउंसलिंग करके ये बातों के निष्कर्ष में पहुंच गई कि यह कारण से हुआ है, तो कल से आपको यहाँ आना है तो ये सब काम छोड़नी पड़ेगी। तो उसने सब छुड़ा दिया, उस मंडली से वो हट गई, तो देखते ही देखते उसके घुटने भी ठीक हो गए। हाँ, वहाँ जाकर के उसकी साइड इफेक्ट कहाँ जाकर के लग गया, इस तरीके से लोगों ने स्टडी करके पता लगाए। तो इसलिए हम भी अपने जीवन में प्रगति उन्नति चाहते हैं तो ये सब चीज़ों के ऊपर में हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके बाद में और सारी बातें हमारे जीवन में दिखेगा कि इस बातों के चक्कर में अगर आ गए हम, परपंच के सरपंच बन गए, तो उसमें किसी के प्रति रिगार्ड खत्म हो जाएगी, रफ टफ बोलने की आदत पड़ जाएगा, ऐसे शब्द बोलेंगे जैसे कि लौकिक में भी हम नहीं बोलते थे, ऐसे लोगों को हम बोलेंगे और किसी के भी मन को ठेस पहुंचने वाली बातें बोलेंगे, और लगेगा कि इतने साल से आप ज्ञान में चलते हो लेकिन बोली वचन तो आपके वहीं कहते हुए। तो इस प्रकार की बातें दिखाई पड़ेगी, भावना खराब हो जाएगी, अच्छे सोचने का तो उस अकल है वो खत्म हो जाएगा, दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार बर्ताव होने लग जाएगा। तो सोचे अगर हमारा खराब हो गया तो हम करेंगे क्या फिर। तो इसीलिए हमें इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा जैसे कि नज़र रखेंगे तो हम इससे बच सकेंगे। तो स्वयं के ऊपर भी हर दिन हमको चेक करना है कि मैं सारे दिन भर में क्या कर रहा हूँ, ऐसी बातों के चक्कर में तो नहीं आ रहा हूँ, किसी के हाँ में हाँ तो नहीं मिला रहा हूँ। तो ये सारी बातों को हमें बीच बीच में चेक करते रहना है। उसके बाद में जो ज्ञान की धारणा होनी चाहिए, योग की जो धारणा होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए, गुणों की धारणा होनी चाहिए, शक्तियों की धारणा हो जानी चाहिए, वो नहीं होगा। बाबा ने 3 दिन पहले भी बोला था मुरली में, कोई कोई बच्चे ऐसे हैं ज्ञान की 1% भी धारणा नहीं होती है। तो ज्ञान की धारणाओं में सबसे बड़ा विघ्न रूप भी है ये, क्योंकि बुद्धि को लैप्स कर देता है, कोई चीज़ अंदर जाने नहीं देगा, और अनुभव ही नहीं होगा तो धारणा कैसे होगी। और बुद्धि में कोई चीज़ पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है गंदगी, और ये चीज़ अंदर बाबा की जो इतने अमूल्य ज्ञान रत्न अंदर कैसे जाएगा। हाँ, और इसका दूसरा आगे का जो साइड इफेक्ट होगा, वो छोटी छोटी बातों में वो बिगड़ जाते हैं, रुट जाते हैं, वो झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि एनर्जी तो हमारी वहाँ लॉस हो रही है, एनर्जी तो हमारा वहाँ बर्बाद हो रहा है। और वहाँ पहले तो उनके मंडली में वो लगे होते, और जो बाद में डिपार्टमेंट में आने के बाद में डिपार्टमेंट में भी इस प्रकार की झंझटें एक दूसरे को झेलना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी नष्ट हो गई और हमने जो अवज्ञाएं जो करके रखा हुआ है इतने सारे, तो आत्मा की शक्ति खत्म होने के बाद में छोटी छोटी जो बातें, छोटी छोटी समस्या, उसको झेलने की ताकत खत्म हो जाएगी आत्मा की। तो इसके कारण से इस प्रकार के साइड इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे। और इसके लिए जैसे कि इसकी क्या निशानी है, तो संबंधों में जो खराबी आ जाता है एक आपस में, दरारें आने लग जाता है, तो उसके बाद में इसको कहा जाता है कि दिमाग तेज होता है, दिल खाली। दिमाग तेज होता है और दिल खाली हो जाएगा। दिल में बाबा बैठा ही नहीं, दिल तख्त नसीन को हमने न जगा दिया, न उसके तख्त पर हम बैठे, न अपने तख्त पर बाबा को बिठाया हमने, न उसके तख्त पर हम बैठ सके। तो दिमाग तेज होगा क्योंकि दुनिया की इन्फॉर्मेशन है, तो दिमाग तो सोते तेज होगा ना, लेकिन दिल खाली तो खाली दिल इस प्रकार की बातें हमें सोते दिखाई देगा। तो उसके बाद में जैसे कि इसके क्या निशानी होंगे, जैसे कि निशानी भी तो होंगे ना तो परपंच के जो सरपंच बनते हैं वो छोटी छोटी बातों को उठाएंगे, जो कमी कमजोरी है उसी को उठा लेंगे। अब गुणों का जो अवगुण उठाने की जो आदत है जहाँ जो काम की चीज नहीं उसी को उठाएंगे, और उसी को चिंतन, उसी को मनन करेंगे। मन में वो चीज आती है तो स्वतः चिंतन होने लगता है, और ज्ञान की चिंतन करो बोलेंगे, बोले कि बुद्धि नहीं चलती है, लेकिन उस चीज जब बुद्धि में आ जाती है चिंतन नेचुरल चालू हो जाता है। फिर कहीं किसी को सुनाने पड़ेंगे तो एक मिनट रोकने का नाम नहीं होगा, धारावाहिक सुनाने में। इसीलिए एक कोई सुना रहे थे, जोक्स जैसे ही था, आप लोग तो टॉपिक देते हैं तो मुश्किल से एक घंटा पौने घंटा मुश्किल से बोलते हो, मेरी घरवाली तो सुबह से लेकर रात तक विदाउट टॉपिक बोलती रहती है तो इस तरीके से जो परदर्शन परचिंतन की जो आदत ही हो जाते हैं उसके मसला बहुत होते हैं, एक पूरा होते ना होते दूसरा टच हो जाता है सोते, इसी को कहते हैं माया की टचिंग। उसके इक्विवेलेंट होते हैं सेम नंबर वाले, वो चीज वहां टच हो जाता है, वो एक खत्म होने से पहले दूसरा ऑलरेडी वह खड़ा हो जाता है, और इस टॉपिक कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगा। और उसके बाद देखा जाता है कि ऐसी बातों के थोड़ा सा लोगों से तंग संग में अगर आ गए तो व्यक्ति पुरुषार्थहीन हो जाता है, और पुरुषार्थहीन हो जाता है एक आपस के एक दूसरों के जो दिमाग खराब करके रख देता है, भावना खराब कर देते हैं, जो लक्ष्य और उद्देश्य लेकर के निश्चय बुद्धि होकर के जो आए थे वो संशय बुद्धि होने लग जाते, और फिर आगे देखा जाता है तो छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा करके बातों को बदकर बनाना, तो उसको चढ़ाना बढ़ाना फैलाना उसको अपने हिसाब से वो फैला देना, लोगों को काम तक पहुंचाया जाए कैसे भी करके। और उसके बाद में इस बातों को देखा जाता है कि उस बातों को कैसे पेश करना है, वो बातों को छोंकदार बनाना रमणीक बनाना, और अच्छी रीति से पेश करना उसको। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में साधु संत महात्माओं ने रामायण महाभारत पुराणों की जो कहानी सुनाते हैं इतने रमणीक बना करके सुनाते हैं, लोग बैठे रहते हैं वहां पर। बाबा कहते हैं ये तो भूसा है, कुछ होता ही नहीं, फिर भी उन्होंने कितना आइडिया लगाए, लोग कहीं हिले नहीं, सुनते रहे हमारी बातें तो इसी रीति से ये बातों को भी पेश करने की ढंग इस तरीके से होगा, एकदम रोमांटिक्स खड़ा कर रोमांटिक्स हो जाए, रमणीक बना देंगे इसको। तो इसीलिए ये पता है करना है कि एक छोटी सी बात को इतनी लंबा चौड़ा बनाना ये हमारा काम तो नहीं है। बाबा कहते हैं समाधान स्वरूप बनो, समस्या स्वरूप नहीं बनो। तो इस बातों को अगर इस तरीके से पेश किया जाता है तो समझ में आने चाहिए कि इस ग्रुप के लोग हैं, हमें इससे थोड़ा दूर रहने चाहिए। फिर कभी मिलते हैं तो पहले तो बाबा की ज्ञान से शुरू होता है, थोड़ी सी बातें पहले शुरुआती जो वार्म अप शुरू होती है तो ज्ञान से शुरू हो जाती है, तो फिर बाद में टॉपिक ऐसे फिसलने लग जाता है कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, लास्ट में उसका सार और उसका निचोड़ क्या है कोई पता नहीं होता है, कहाँ जाकर के वो चीज़ें पूरा हो गई और कितना सुनाना बाकी है। फिर दोबारा मिलेंगे तो और ज़्यादा कल सुनाएंगे बोल के कल के लिए हो, जैसे कि बता के रखते तो उसके बाद में फिर आगे देखा जाता है कि सब फिर छोटी छोटी बातें बढ़ जाता है तो आगे जाके किसी के लिए षड्यंत्र भी रचने लग जाते, किसी की खटिया खड़ी करने की भी बातें आ जाती है। तो इस सभी बातों से हमें देखना है कि एक छोटी सी बातों से शुरू होकर के स्त्री ने कैसा रूप ले लिया है। और जो कमजोर सोच वाले थोड़ा सा नए होंगे, थोड़ा सा भावना ज्यादा होंगे, उनको तो बहुत ज्यादा आँच आ जाती है जीवन में। इसीलिए इसके ऊपर भी हमें देखना है कि मैं इस बातों से, कभी तो होता है कि मैं खुदे बन जाता हूँ, कभी दूसरा बन जाता है तो उसका आँच आने लग जाता है। इसीलिए हमें इस बातों से भी, जैसे कि पूरा स्ट्रिक्टली रूप से इस बात से हमें जैसे कि गांठ बांध लेना है कि हमें इस बातों से कभी भी हाथ नहीं डालनी है, इस बातों में अपने को सेफ रखना है। तो इसके बाद इस सब बातों का जो बातों को जो परपंच में फंसे हुए होते हैं और सरपंच बनते हैं, उनके मुख से कैसे बोल निकलेंगे। जो करना है करो, सत्यिक में किसने देखा है कौन क्या बनेगा। तो बाबा ने यहाँ जो बोर्ड में लगा है कि ऐसे बच्चों को देख करके बच्चों के ऊपर बाबा को तरस आता है। अगर ऐसा बातें सुनकर के बाबा को तो लगता है बाबा को क्या नहीं जानता है, अगर ये नाम बता देंगे तो कल ही सुधर जाएंगे, बाबा के माँ बाप के कल ही सुधर जाएंगे, लेकिन बाबा नहीं बताएगा। हाँ तो इसलिए उनके जो नारे होते हैं कि जो करना है करो, किसने देखा है, सत्यिक में क्या बनेंगे कौन पहचानेगा। लेकिन इस बातों में, क्योंकि प्राप्ति यहाँ की नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें इस बात में भी थोड़ा सा जैसे कि अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो इसके बचने के उपाय क्या है क्योंकि बचने के उपाय भी तो चाहिए ना। हाँ, स्वयं को संभालना है। तो इसके लिए तो यहाँ पर हमने चिंतन में निकाले थे, सेम टॉपिक है आपके जैसे शब्दों में, जैसे कि अपने को, जैसे कि लक्ष्य में बांधना है, अपने को उद्देश्य में बांधना है। लक्ष्य और उद्देश्य की खूंटी मजबूत होनी चाहिए। जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी होंगे, अपने लक्ष्य और उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य और उद्देश्य को अगर हमने भूल गए तो इतना बड़ा लक्ष्य से हम पीछे हट जाएंगे, और लक्ष्य जैसे विस्मृत तो होने लगेगी, ये चीजें सोते हावी हो जाएगा। तो इसीलिए इस मार्ग पर जो चलते हैं तो स्वयं भी बचना है तो दूसरों को भी बचाने का लक्ष्य रखना है। तो इतनी सारी नुकसान अगर हो रही है और इतने सारे नुकसान होता है तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा ना। इतने देखने में तो साधारण लग रहा था, हल्की सी बातें लग रही थी, लेकिन इतने बड़े साइड इफेक्ट, तो हमें सोते ही अलर्ट होना पड़ेगा और सोते अपनी रक्षा और अपने आसपास में जो भी हम शुभ चिंतक बनते हैं, मानते हैं अपने को, तो दूसरों को भी इस बातों से छुड़ाना, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके लिए ज्ञान और योग में इंटरेस्ट बढ़ाना, अनुभव जब तक नहीं होता है लागे रहना, अनुभव की अथॉरिटी जब हमारे जीवन में आती है, अच्छे अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। कहते हैं कि मूल्यवान चीज जब मिल जाती है तो मूल्यहीन चीज स्वतः छूट जाता है। तो ये सब चीजें तो हमने वो चीज न पाने से योग चीज में लगे हुए थे, और वो चीजें जब हमको मिल जाता है और उसकी खामियां जब हम भूगते हैं और उसकी सजाए के रूप में हमें ये चीजें जीवन में दिखाई देता है, तो इससे हमें निकलने में ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हमें मर्यादाओं की बाउंड्री में अपने को रखना है। श्रीमद बाबा ने जो दिया मर्यादा जो बताए गए, तो उसके अनुसार अगर हम चलते रहेंगे तो हम इस सारी चीजों से मुक्त होने में और इससे बचना और दूसरों को बचाने में इजी हो जाएगा। और फिर आगे देखा जाता है तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा किनारा होना है और उनके प्रति भी शुभावना और शुभकामना रखनी है और बाबा से अर्जी डालना है, बाबा सबको सद्बुद्धि दो, आप सबको सुधारने आए हो, सबको बनाने आए हो, तो आप सबका सबको ठीक करने वाले आप हो। इस तरीके से बाबा से उनके लिए भी दुआएं करना है हम सबको, क्योंकि क्योंकि नहीं तो ये बातें आज नहीं तो कल उसका प्रकोप में कभी न कभी तो उसकी खींचातान में हम भी आ जाएंगे। उसकी जो सुंदर हिरण स्वरूप होता है, उसका सोने का जो हिरण लगता है कि ये हल्की सी चीज है, लेकिन फिर बाद में इधर ज्ञान ध्यान थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है तो वो चीज हमें हावी होने लगता है। तो फिर आगे हमें समय की जो पहचान बाबा ने दिया है कि ये समय की पहचान जब तक हमारे जीवन में अंदर कूट कूट के नहीं भरता है, एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है, एक एक सेकंड का जो वैल्यू बाबा बता रहे हैं कि लंबा समय का अभ्यास चाहिए, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो बाबा आज से 50-52 साल पहले मुरली चलाते थे तो बिना आगे देख करके चलाते थे, खींच करके बुद्धि से देखना पड़ता था, लेकिन अभी तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया में उथल पुथल हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार पापाचार अत्याचार दुराचार बढ़ रहा है, कोई चीज का हद से बाहर हो चुका है। और बाबा कहते थे कि उस समय बिना सामने खड़ा है, अभी तो हमारे सिर के ऊपर आ चुका है, कभी भी गाज गिर सकता है, और उस समय हम सोचेंगे कि तब कर लेंगे, तो उस समय कभी नहीं आएगा। तो एक एक सेकेंड का वैल्यू बाबा की याद से जितना सुख जितना शांति जितना खुशी जीवन में मिलता है, दादी जानकी जी क्लास में कैसे हम सबको उमंग उत्साह दिलाती थी कि जैसे कि उसने वो सब चूस लिया है, जैसे हमें भी चात्रक पंछी बनकर के उस चीज को अपने जीवन में लानी। तो एक एक पल भी हम सफल कर सकते, इसलिए शुरू में तो घंटा सफल करना मुश्किल होता है, तपस्या करते करते हम मिनट में आ जाते हैं, तो बाद में एक सेकंड भी हमारा सफल हो जाएगा। पहले घंटे को सफल करना मुश्किल होता है, फिर करते करते मिनट में आ जाएंगे, फिर सेकंड सेकंड एक बाप दूसरा नौकरी की स्थिति नेचुरल आ जाएगा। उसके बाद में जो वातावरण वायुमंडल को बनाने की जिम्मेवारी मैं भी हूं, चाहे कहीं भी रहते हैं, चाहे सेंटर में रहते हैं, चाहे लौकिक में होकर के अलौकिक में रहते हैं, उस सब का वातावरण बनाना वायुमंडल बनाना उसके जिम्मेवार मैं आत्मा हूं। बिगाड़ने में हमने इतना समय दिया है, अब मुझे बनाना है, तो उस बनाने में हमें सपोर्ट देना है। कोई बिगाड़ना चाह रहा है तो उसके लिए हमें दूर से ही सलाम भरनी है और अपना काम में बिजी रहना है। और आगे हमने उस चिंतन में निकाले थे कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत करने के लिए सबके प्रति रिगार्ड की भावना, प्यार की भावना, जो स्नेह, बड़ों के लिए रिगार्ड, छोटों के लिए प्यार, इस तरीके से माहौल को बनाने के लिए, अगर मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूं तो अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करके उस स्वरूप में अपने को लाना है, उस स्वरूप में अपने को ढालना है। जब मैं बन जाऊंगा तो सब बने हुए नजर आएंगे, आज सारा रुका हुआ कहां है, मैं बना नहीं हूं इसलिए बहुत सारे सबको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस दिन मैं बन करके रेडी हो जाऊंगा, उस स्वरूप में आ जाऊंगा, सब बने हुए नजर आएंगे। इसीलिए हमें संगठन को कैसे मजबूत करनी है। इसके बाद तो जो कर्म सिद्धांतों का जो ज्ञान है ना, बाबा ने इतना सूक्ष्म रूप से दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं उसका सजाए हमको आज नहीं तो कल भोगनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कर्मों का फल हमें, ये प्रभु की अमानत है, समय, संकल्प, एनर्जी, ये बड़ी हमारे बोल वो प्रभु की अमानत है, उसकी सेवा में लगना चाहिए। उसकी सेवा में अगर नहीं लगती है तो यहां किया था कहीं ना कहीं तो उसको मिलेगा ही, और उस समय उसको पता नहीं होगा कि वहां किया था इसीलिए ये हुआ है। अगर ये पता लग जाता है तो फिर तो वो पहले से अलर्ट हो जाता है। इसीलिए हम एक छोटा सा गलती कहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिलेशन में, कहीं उसके कनेक्शन में कोई ना कोई चीजें हमें दिखाई देगा। तो जैसे वो बता रहे थे कि जो सुनाया कि ग्लानि करना और परदर्शन परचिंतन करने से घुटने का प्रॉब्लम कैसे आ गई, उसका बच्चा जाकर के डॉलेट कैसे हो गया, तो इस तरीके से कर्म सिद्धांतों का जो रूल है कि कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, अच्छा करेंगे तो अच्छे का अच्छा ही मिलेगा ही, घटिया करेंगे तो घटिया का घटिया फल मिलेगा ही, तो माइनस प्लस नहीं होगा इसमें। तो अच्छा किया तो बुरे का आधा कटअप करके प्लस माइनस इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा नहीं होगा। बुरे का भी भोगना पड़ेगा, अच्छे का भी आपको प्रलाभ के रूप से मिलेगा ही। इसलिए ये कर्म सिद्धांतों का जो ज्ञान है तो हमें सदाई स्मृति में होने चाहिए। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जैसे कि सहन शक्ति के अवतार समानी की शक्ति का अवतार बनना पड़ेगा। ये सारी गुण पार्टिकल में होनी पड़ेंगी, नहीं तो ऐसे दुनिया में भी तो इतने बहुत सारे लोग हैं, कई सारे ने तो इसको पार्टिकल के जीवन में निकाल दिया, इसीलिए वो मान बन गए। तो आज ये गुण शक्तियां जो रटने के लिए जपने के लिए माला फेरने के लिए मिले नहीं है, उतारने के लिए मिले हुए हैं जीवन में। लेकिन वो हमें याद रहना चाहिए कि मुझे संगठन को बनाना है तो लचीला भी होना पड़ेगा, नरम भी होने पड़ेगी, थोड़ा बातें समाना भी पड़ेगा, सहन भी करनी पड़ेगी। इसलिए आगे कि जो चीजें हो रहा है उसमें हमें साक्षी होकर देखना भी है, कर रहा है तो उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होनी है, हाथ सपोर्ट नहीं करना है ताली बजाने में, किनारे होना है, स्वयं को बचाना है, तो ये वाइब्रेशन खराब ना हो जाए उसके ऊपर ध्यान देना है। तो लास्ट में ब्राह्मण परिवार की वैल्यू, ब्राह्मण की वैल्यू, ब्राह्मण परिवार की वैल्यू, संगठन की वैल्यू क्या है, कल्प कल्प का ये रिश्ता है। तो कल्प कल्प के हम कहीं न कहीं साथ में थे, सहयोगी थे, कहीं न कहीं आगे पीछे होकर के चले हैं, तो आगे पीछे होकर के सबको चलना है, सबको साथ लेकर के सभी के साथ प्यार से स्नेह से सम्मानीय जीवन देना है, जीना भी है, सबको सम्मान देना है। तो ये जो परपंच की जो सरपंच बनने की जो बातें हैं कि इसमें हमें बचाव भी करना है, इसकी साइड इफेक्ट को भी देखनी है, और इससे बचेंगे तो प्राप्ति को भी हमें सोते फायदा दिखने लगेगा। तो इस सारी चीजें अगर हमारे जीवन में आ जाएगी तो हम तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, और जो बाबा आस हमारे ऊपर रखा है, विश्वास रखा है, भरोसा रखा है, तो वो सारी चीजें हमारे जीवन में अगर आ जाती है तो बाप दादा हम सबको वतन से गोल्डन पुष्प की वर्षा करेंगे और हमारी दिन दोगुना रात चौगुना चढ़ती कला उड़ती कला और नेचुरल अभ्यक्त स्थिति बन जाएगी। और हम जहाँ रह रहे संसार की आत्माएं हमारे प्रति ऊंची निगाहें रख करके देख रहे हैं, हमें उस भावना से देख रहे हैं, तो हम उसका सबूत दे सकेंगे। जो जो भी बातें चिंतन किए थे आप सबके समक्ष रखा, तो कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी गई होगी तो जरूर आप सबसे मैं ऑलरेडी क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति।
अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल, गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण।